તારીખ 22/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 213 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 16 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
આજ્ઞા હે કે ત્યાં મર્યાદા હે જ્ઞાન કી, મોક્ષ ઇસ કાલ મે જ્ઞાન કી, મોક્ષ નહીં હોતા હે. फिर भी यदि मोक्ष होता है तो मोक्ष आप मुझे मत दें, मोक्ष आप मुझे मत देना. मोक्ष के बजाय हमको सत्पुरुष का चरण का ध्यान मिले ऐसा वरदान देना, मोक्ष का वरदान मत देना. तो एक अपनी मोक्ष दशा के विषय में एक बात कही, दूसरा ये कहा कि जो निज आत्मा है और जो सत्पुरुष है उसमें हमें भेद नहीं दिखता है. सत्पुरुष ने कर लिया तेरे पर तो खुल गया, सत्पुरुष ने कर लिया है तो इसकी विशेषता साबित हो चुकी, तो हमारा मानना तो शून्य है, यानी हमारे परिणाम तो शून्य गुप्त. और एक बात और भी है कि तेरी पहचान दुर्गम है, सत्पुरुष की पहचान दुर्घट है, इसलिए हमको अधिक प्रेम आता है सत्पुरुष के प्रति. इतना ही नहीं, तेरे से और सरल हो तो तभी ऐसा हो सकता है, अपना स्वरूप है वो असरल है और सत्पुरुष है वो सरल है. एक प्रत्यक्ष सत्पुरुष के योग का महत्व स्थापित करने के लिए जो बात कही है वो एक आनंद आश्चर्य का विषय है. अकेले आश्चर्य का विषय नहीं है, आनंद आश्चर्य का ही विषय है. ऐसा ही होता है इस भूमिका में, ऐसा होता है उसमें लाभ क्या और नुकसान क्या है, अगर किसी को ऐसा तर्क हो सकता है. जबकि जिसको ऐसा होता है उसको ऐसा तर्क नहीं होता है. क्या फिर से कि जिसको सत्पुरुष का उतना महत्व आया कि उसने परमात्मा को भी गौण किया और अपने आत्मा को भी गौण कर दिया और उतने मुख्यता में पराभक्ति की हद तक गए, ऐसा किसी को हुआ उसको तो लाभ नुकसान का कोई तर्क उठता नहीं, पर लाभ नुकसान का तर्क उठने की वहां गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन कोई दूसरे को ऐसा लग सकता है कि एक बात कोई विचित्र तो है ही, जिनेन्द्र परमात्मा को भी गौण कर दे, अपने परमात्मा निज परमात्मा को भी गौण कर दे और सत्पुरुष के चरण सानिध्य को इतनी हद तक जो वांछता है तो उनको नुकसान तो शायद नहीं हो जाएगा। कहते कि नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं होगा? ऐसी भूमिका में छद्मस्थ जीव आता है जो सविकल्प दशा में है, उसमें मुमुक्षु भी है और ज्ञानी भी है, मुमुक्षु भी है और ज्ञानी भी है। तो मुमुक्षु को क्या लाभ होता है? मुमुक्षु को यह लाभ होता है कि उसको आत्मज्ञान होने का एक बोध बीज योग्य भूमिका के संप्राप्ति हो जाती है। भले कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई न्याय नहीं पढ़े, लेकिन ऐसे ही उसको आत्मज्ञान हो जाए, ऐसी परिस्थिति में वो आ जाता है। तो उसका तो अज्ञान और मिथ्यात्व टूटने की बहुत पूरी तैयारी वहां हो जाती है। वो सत्पुरुष को सत्पुरुष नहीं मानता है, परमेश्वर बुद्धि से उसको प्रभु मानता है। तो उन्होंने लिखा, इसके बाद एक पद लिखा है, इसमें लिखा है यम संयम नियम आप कियो कुनि त्याग विराग थाग लियो मन मौन मौन रहो। तो ऐसा सब किए पर, शास्त्र अध्ययन करने पर भी तदपि कछु हाथ हो दोनों करो, अब क्यों न विचारित है मन से कुछ और रहा उन साधन से। तो वो साधन कौन कि सत्पुरुष के प्रति उतना परम भाव आना, यही साधन है। वहां उन्होंने एक पद की रचना और की कि पर प्रेम प्रवाह गढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे। इतना प्रेम हुआ अपने प्रभु के प्रति, सत्पुरुष के प्रति, तो सब आगम के भेद उनको उनके हृदय में आ जाता है, बिना आगम पढ़े। उसको आगम पढ़ने की कोई अटक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। ऐसी निर्मल भूमिका हो जाती है परिणामों की। इसका अज्ञान और मिथ्यात्व को टूटने की बिल्कुल एकदम परिस्थिति खड़ी हो जाती है। इस सम्यक्त्व के बहुत समीप आ जाता है जी। ये बात तो रही मुमुक्षु की भूमिका की। तो इसी जगह कोई ज्ञानी होता है, जब खुद तो ज्ञानी है ही, फिर भी सब तो उसके प्रति उतना लिखते हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य में जिस सत्पुरुष से अपने को लाभ हुआ है उसको लक्ष्य में रखा है। तो वर्तमान ज्ञान की ज्ञानी की भूमिका में भी यही परिणाम उसके चले, उसको क्या लाभ होता है कि ज्ञानी को न तो अज्ञान है न तो मिथ्यात्व है, दो प्रकार के दोष तो उनको है ही नहीं। अब इनके जो दोष है वो अचारित्र का है, मिथ्या चारित्र भी ज्ञानी को नहीं है, ज्ञानी को अचारित्र है। चारित्र तीन प्रकार के हैं, वितराग चारित्र, तो वास्तव में चारित्र है, खरेखर चारित्र है, और जो अपनी भूमिका से शुभ परिणाम है, व्यवहार के परिणाम है, ये अचारित्र के परिणाम है। और अज्ञानी के जो परिणाम है राजा विभाव, मिथ्या चारित्र में जाता है। तो ज्ञानी को मिथ्या चारित्र नहीं है, अचारित्र है और चारित्र है, कुछ अंश में चारित्र है कुछ अंश में अचारित्र है। तो ज्ञानी के ऐसे परिणाम में क्या लाभ होता है कि उनके जो अचारित्र के जो परिणाम है वो अधिक कमजोर हो जाते हैं, और अधिक कमजोर कहां से होते हैं यदि इसका विचार किया जाए तो। मूल में से कमजोर हो जाते हैं, कहां से? मूल में से। जैसे कोई पेड़ है, बड़ा वृक्ष है, इसका मूल कमजोर हो गया कभी भी गिर जाएगा, कितना भी तगड़ा दिखता हो, लेकिन जिसका मूल कमजोर हो गया कभी भी गिर जाएगा वो। ऐसे गुणस्थान नहीं बदला हो तो भी, मानो के चतुर्थ गुण स्थान में यही स्थिति रही उनको, पंचम गुण स्थान में नहीं आया, छठे सातवें में नहीं आया, मनी दशा में नहीं आया, ऐसी कोई गृहस्थी की दशा हो, स्त्री पर्याय की दशा हो, कुछ मनी दशा में नहीं आ सकता हो, किंतु ऐसे परिणामों में उनके अचारित्र के जो मूल है वो कट जाते हैं, कुछ कमजोर हो जाते हैं और कुछ कट जाते भी हैं। अब जो वृक्ष रहा है अचारित्र का, वो मूल बिना का रहा है। तो भवानपर में उस भव में शायद वो चारित्र दशा में नहीं आ सकता, कि नहीं आया समझो, उस ऐसी परिस्थितिवश तो वो दूसरे भव में मुनि दशा लेकर के बहुत आगे निकल जाएगा। मुनि दशा में तीव्र पुरुषार्थ बहुत शीघ्र काल में अल्पकाल में होने का ऐसा कारण होता है कभी कभी किसी साधक जीव को, कि उसकी पूर्व भूमिका में उन्होंने अचारित्र के मूल काट दिए हों। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास, हमारे पुराण में, हमारे इतिहास में, भरत चक्रवर्ती का। तो भरत चक्रवर्ती की जब गृहस्थी छोड़ी और जैसे ही मुनि दशा में प्रवेश किया, सप्तम गुण स्थान में सीधा आता है मुनि, दीक्षा धारण करते ही गुण स्थान जो पलटता है वो पहले छठा नहीं आता है, सातवां आता है ध्यानस्थ दशा में। तो भरत चक्रवर्ती छठे गुण स्थान में ही नहीं आए, दीक्षा लेकर के जैसे ही आत्म ध्यान में बैठे, सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ हुए, फिर श्रेणी का परिणाम चल गए, छठे गुण स्थान में व्यवहार चारित्र के परिणाम में आए नहीं। क्यों नहीं आए? दूसरों को ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे ऋषभदेव भगवान को ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो उनके पिताजी थे, तीर्थंकर थे, उनको एक साल लगा है। ऋषभदेव भगवान को मुनि दशा का काल कितना? एक साल लगा है। एक साल तक आहार नहीं लिया, पहले 6 महीने में आहार का विकल्प आया, कोई जानते नहीं थे आहार की विधि। देखिए आपका प्रश्न का उत्तर आया, अब तो विधि जानते हैं आगम से, लेकिन विधि का विधान किसी के पास नहीं है कि कैसे आहार दें। इस पद्धति से लोग जीते नहीं अपने जीवन, लेकिन विधि तो आगम से मालूम है। उस वक्त तो आगम ही नहीं थे, विधि कोई जानते नहीं थे, तो क्या तीर्थंकर मुनि पढ़ा में नहीं आवे क्या? हमारे जो वर्तमान परिस्थिति से इससे खराब थी चतुर्थ काल के प्रारंभ में, तो क्या मुनिपणा रुक जाए किसी का इसके कारण से कि नहीं? तो आयु मुनि दशा में 6 महीने में आहार का विकल्प आया, आहार का योग नहीं बैठा और स्वरूप में लीन हो गया। और 6 महीना हुआ आहार का योग बैठा, तो भी प्रतिबंध नहीं हुआ, केवल ज्ञान ले लिया बाद में जा। तो इस तरह से 1 वर्ष ऋषभदेव भगवान को मुनि दशा में लगता है और भरत चक्रवर्ती को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेते हैं मुनि दशा में आते ही, इसका कारण क्या? कि अगर कोई भरत चक्रवर्ती की गृहस्थ दशा जो है उनका अंतर अभ्यास करें तो उसको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने अपने गृहस्थी चलाते हुए, 6 खंड के राज को चलाते हुए उतना भीतर में आत्म ध्यान किया है, उतना किया है कि चरित्र के मूल सब काट दिए थे। तो मुनि दशा में चरित्र का परिणाम रहा ही नहीं, तो वृक्ष ऐसे ही गिर गया, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। तो एक दूसरे तरह का हिसाब किताब है, गुणस्थान में बदलता है, चतुर्थ गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान रहता है, लेकिन उसमें भी अंतरंग विकास बहुत हो सकता है। कितना हो सकता है? कि जितना मुनि दशा में होगा उतना हो सकता है। मुनि दशा में क्या करते हैं? चारित्र को काटते हैं और चारित्र में आते हैं, विकल्प को तोड़ते हैं, निर्विकल्प में आते रहते हैं अंतर्मुहूर्त में, विकल्प को तोड़ करके अंतर्मुहूर्त में आते रहते हैं।
जाता है वो तो पांचवा क्यों नहीं आता? इतना कट जाता है वो राग
आचार्य, तो पांचवा गुरु स्थान क्यों
नहीं आता? पांचवा में नहीं आता है।
नहीं, उसमें क्या है कि मूल काटता है, ऊपर से नहीं काटता है। ऊपर से काटे तो 5वां में आए, 6वां 7वां में आए। एक चारित्र का एक पेड़ समझो, तो कोई ऊपर से काटता है तो सबको दिखता है, तो देखो पेड़ को काट रहा है, लेकिन जो मूल को काटता है किसी को दिखता नहीं है। अब कौन बढ़िया काम करता है आप ही समझाइए। कि पूरे वृक्ष को गिराने के लिए मूल से ही छेद करना चाहिए, तो कोई इस तरह से चलते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है भरत चक्रवर्ती का, ऐसा भी होता है। ये जो श्रीमद जी ने ये बात कही है कि जिसमें सर्वज्ञ परमात्मा को भी गौण किया और अपनी आत्मा को भी गौण किया, मोक्ष पर्याय को भी गौण किया और एक सत्पुरुष के चरण सानिध्य को मुख्य किया, उसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। ये बाहरी गिनती में नहीं आने वाली चीज है, ऐसी एक भीतर की चीज है तो उनको इस शैली से, इस कथन पद्धति से उन्होंने अच्छी तरह दर्शाई है। अब कहते हैं शेष अंश पत्र के लेते हैं कि ज्ञानी पुरुष त्रिकाल के बाद जानने पर भी प्रकट करते नहीं है, ऐसा आपने पूछा। ये पत्र किसको लिखा है? सौभाग्य भाई को लिखा है ये पत्र। कि आपने ये पूछा कि कितने ज्ञानी तो बहुत भूत भविष्य की बात जान लेते हैं, निर्मल ज्ञान में शुद्ध ज्ञान में ऐसा भाषण हो जाता है, फिर भी वो किसी को बताते नहीं हैं, प्रकट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा आपने हमें पूछा। उसमें संकेत क्या था? आप भी बहुत जानते हैं, आपके पास भी ऐसा चमत्कारिक ज्ञान है, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं, हमको भी नहीं बताते हैं, ये क्या बात है? इस संबंध में ऐसा जानने में आया है कि ईश्वरी इच्छा ही ऐसी है। हमारी वाणी मौनपना को भजती है, खुलती नहीं है, तो कुदरत का संकेत है इसमें। ईश्वर इच्छा में तो कुदरत का इसमें संकेत है। हम जानने पर भी बोल पाते भी नहीं, ऐसा कोई रहता है, सहज रहता है, होता है, तो इसमें कोई संकेत है, कुदरत का ये संकेत है कि अमुक पारमार्थिक बात के सिवा ज्ञानी बीजी त्रिकाली बात प्रसिद्ध न करें। एक तो मुख्य कारण वो है कि जो पारमार्थिक लाभ की बात है, आत्मलाभ की बात है, धर्मलाभ की बात है, उसके सिवा दूसरी बातों को वो प्रकट नहीं करते हैं, जानते होने पर भी प्रकट नहीं करते हैं। और ज्ञानी की भी अंतर इच्छा ऐसी ही जानने में आई है, ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, परमार्थ के प्रकरण में थोड़ा बहुत परिश्रम लेते हैं दूसरों के लिए, लेकिन व्यवहार के कार्य में उतना परिश्रम वो नहीं लेते हैं। जिसको किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को कुछ कर्तव्य रूप नहीं होने से जो कुछ हृदय में आता है उतना ही कर लेता है। क्या दूसरे तो कोई आकांक्षा नहीं है दुनिया के पदार्थों की, तो जगत के पदार्थों के में सुख की आकांक्षा तो उसको नहीं है, इसलिए उसको जगत में कुछ कर्तव्य रूप दिखता नहीं है कि मैं ये करूं वो करूं, कुछ कर्तव्य तो दिखता नहीं है। फिर भी जो कुछ करते हैं तो पूर्व प्रारब्ध योग अनुसार जो भी उदय आता है तो उसको पूरा करने के लिए, हिसाब किताब साफ करने के लिए उतना कर लेते हैं। हम तो कुछ ऐसा ज्ञान धराते नहीं है, हमारे पास कोई त्रिकाली ज्ञान नहीं है। आपने कुछ लालच हुई होगी आपको, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई त्रिकाली ज्ञान नहीं है कि जिसे तीन काल सर्व प्रकार से जानने में आए। क्या अपेक्षा लिया? कुछ प्रकार से तो जानते हैं, सर्व प्रकार से नहीं जानते हैं, केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा करके इस बात को उड़ाइए। हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जिससे तीन काल सर्व प्रकार से जानने में आए, तो केवल ज्ञान में सर्व प्रकार से तीन काल जानने में आता है। हमको तो कुछ कुछ आता हो तो उसकी तो हम कुछ गिनती करते नहीं है। और हमको ऐसा ज्ञान का कोई विशेष लक्ष्य भी नहीं है और ऐसा कोई चमत्कारिक ज्ञान का हमें कोई महत्व नहीं है। हमको तो वास्तविक ऐसा जो स्वरूप है उसकी भक्ति और असंगता प्रिय है। हमको तो हमारा स्वरूप प्रिय है और असंग स्वरूप में असंग भाव से रह जाए हम वही हमको प्रिय लगता है। इससे ज्यादा हमें कोई दूसरे के भविष्य के कारण में कोई बातें करने लगे या कोई बताते रहे इसमें हमको कोई रस आता नहीं है। ख्याल आ जाता है तो भी हम बोलते नहीं है। वेदांत ग्रंथ प्रस्तावना भेजा होगा नहीं तो तुरंत वेदना भेजिएगा विनीत आज्ञांकित ऐसा करके इस पत्र को समाप्त किया है। वेदांत ग्रंथ की प्रस्तावना का कोई किसी ने लिखा हुआ छोटा सा प्रस्तावना के पन्ने होंगे या छोटा सा ग्रंथ होगा वो भेज दिया होगा वरना भेजिएगा ऐसा करके सूचना लिखी है। वो तो अन्य मत के भी काफी ग्रंथ पढ़ लिए थे उन्होंने पढ़ते भी थे उसमें अपने ज्ञान में कोई बाधा आती नहीं। चार वेद पुराण आदि शास्त्र सब मिथ्यात्मना पर ज्ञानी ने तो ज्ञान भाषा एक ठेकाने थरो जिन वर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांगो। पद इसका है ना सिंह जी का ये पद है क्योंकि जिसकी दृष्टि साफ है वो कुछ भी दिखता देखते हैं तो अपनी दृष्टि से देखते हैं उसको मिथ्या तो होने का अवकाश नहीं है। उनको नुकसान होने की संभावना रहती है। जिसको दृष्टि सम्यक नहीं है उनको तो शास्त्र भी ज्ञानी की आज्ञा से पढ़ना अपने स्वच्छंद से कुछ नहीं पढ़ना ये बात है। सबको नमो नमः। सब मैंने अपना स्वरूप वांछा इच्छा इच्छा वांछा या इच्छा के अर्थ के रूप में काम शब्द का प्रयोग होता है और इसी प्रकार से पंचेंद्रिय विषय के अर्थ के प्रयोग में भी उसका वांछा इच्छा का शब्द प्रयोग होता है। अनन्य यानी कि इसके बराबर दूसरा नहीं शब्द के अर्थ समझाते हैं सर्वोत्कृष्ट अनन्य मैंने सर्वोत्कृष्ट अनन्य भक्ति भाव यानी इसके जैसा इसके बराबर दूसरा नहीं ऐसा भक्ति पूर्वक उत्कृष्टता वैद्यनाथ जी वही शब्द लिखा है वैद्यनाथ जी करके कोई वेदांत के प्रकांड विद्वान है मुमुक्षु वैद्यनाथ जी योग मार्ग के सारे अच्छा परिचय ही है मैं योग मार्ग को जानता है ऐसा जानता हूं। सद्वृत्ति वाला योग्य जी है सद्वृत्ति मैंने आत्मकल्याण को चाहता है जिस पद का आपने साक्षात्कार पूछा है यह पद का साक्षात्कार फिलहाल अब तक उसको हुआ नहीं है। पूछा कि इसको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ योगाभ्यास बहुत करते हैं कि नहीं हुआ है पूर्व काल में उत्तर दिशा में विचरना विचरने के बारे में इसके मुख से श्रवण किया तो इस विषय में फिलहाल तो कुछ लिख सकते नहीं है। यद्यपि उन्होंने आपको झूठा कहा है, झूठा नहीं कहा है, इतना लिख सकता हूं। एक प्रासंगिक बात थोड़ी लिखनी है। अब जो लिखते हैं वो थोड़ा विशेष बात है। पत्र का जो अक्षांश है वो यही पैराग्राफ है। और बाह्य लक्ष्य रहता है अतः पहचान नहीं हो सकती। पहचान नहीं होने का कारण बाह्य लक्ष्य है और जब पहचान होती है अब क्या होता है? पहचान नहीं होने का कारण बता दिया तो मिला नहीं मिला बराबर हो गया। अब पहचान होती है तब जीव को कोई अपूर्व स्नेह आता है। कितना अपूर्व स्नेह आता है कि परमात्मा के प्रति आवे इतना आता है। मर्यादित आता है, असीम प्रेम आता है, बेहद प्रेम आता है। वो तो 213 में लिखिया कि मोक्ष को भी गौण किया और अपने को भी गौण कर दिया। इतना बेहद प्रेम आता है और उसका क्या लक्षण है? ये ऐसा कि इस मूर्ति के वियोग में एक घड़ी आयुष भोगना यह भी उसको विटंबना लगती है। एक घड़ी वो दूर रहना चाहता ऐसी स्थिति पैदा होती है। अर्थात अगर उसको रहना पड़ता है तो उसके स्वयं के अधिकार का विषय नहीं रहता। संयोग वियोग तो पूर्व कर्माधीन होता है। लाख चाहने पर भी वियोग हो जाता है तो उसको योग में वो उदासीन भाव से उसमें ही वृत्ति रखकर जीता है। उसका देह उधर है और आत्मा उधर है तो देह उधर है तो उदासीनता से जो भी उदय आता है जीता है इसमें मुर्दे के बराबर। वृत्ति में देव नहीं है फिर भी जो संयोग चला गया उसमें जो असंतोष हुआ है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में कितना फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। प्रत्यक्ष का जो असर आता है वो परोक्ष का कभी नहीं आता है। आप एक एक्सीडेंट देख लो ना रास्ता पर और जो असर आपके ऊपर आएगी तो उसके 10 फोटो अखबार में देखने पड़ने आएगी क्योंकि देखने वाले को तो एक एंगल से एक फोटो देखता है और कैमरा वाला ने हर बाजू से उसका फोटो लेकर के अखबार में लिया। उतना तो प्रत्यक्ष को देखने को मिलेगा ही नहीं तो एक ही जगह खड़ा है उसको जो देखा है फिर उसको भी असर आएगा तो परोक्ष वाले को कभी नहीं आता। हमने ऐसा दृष्टांत देखा है जब मुमुक्षु से मिले थे। एक भाई बहन एक भाई थे एक बहन थी तो एक बस में सफर कर रहे थे उसी बस का एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में उसने सैनिकों को मरते देखे
और कहीं के हाथ पैर सिर टूटते हुए चिल्लाते हुए जैसे खून बहा कर इतना भयंकर दृश्य प्रत्यक्ष रूप में देखा खुद बच गए तो सारे जीवन बस के दिशा सफर नहीं कर सकते। इतनी गहरी चौंक पहुंची प्रत्यक्षता के कारण से कि आज भी कहीं साल बीत गए कहीं वर्ष बीत गए हैं तो बस के सफर नहीं कर सकते। कोई भी स्थान में खड़ी हो जाती है और जो भाई उस वक्त हुआ था तो भाई इतनी मात्रा में पैदा होता है लेकिन हमको हमको नहीं बैठना है हम बैठ नहीं सकें हम सकते मगर उसमें बैठ सकते वो परिणाम में ये भाव की शीघ्रता आ जाती है। करो वो बात हमने भी सुनी क्या असर हुआ हाँ बहुत फर्क पड़ता है। उसके योग से उदासीन भाव से उसमें भी वृत्ति रख करके जीते हैं उसकी अवधि में बदले में दूसरे पदार्थ का संयोग और मृत्यु ये दोनों उसको समान हो गया है। क्या बैंकों ने दृष्टांत दिखा दिया है कि बालक है बच्चा है वो बाजार में अपनी माँ से अलग हो गया तो उसको पुलिस स्टेशन पे आकर सज्जन ले जाते हैं कि बच्चा किसी का खो गया है वो माँ माँ के सिवा कुछ बोलता नहीं है तो उसको पूछे कि तुम कहाँ रहते हो तो क्या माँ तुम कौन हो तो क्या माँ तुम्हें क्या चाहिए तो माँ सभी प्रश्न का उत्तर एक माँ आता है तुमको क्या खाना है तो कहो माँ तुमको खिलौना दोगे तो कहो माँ दूसरी बात नहीं करेगा न वो मिठाई खाता है न खिलौना से क्षमता भी है ऐसी हालत शत्रु से पहचान होने से जाते हो गए तो उसको दूसरे प्रयास पदार्थ को संयोग दो उसको मृत्यु के समान लगता है तो मेरे शत्रु को बुलाने के लिए तो क्या चीज बीच में आ गई मेरा जीवन तो यहाँ है तो जीवन को मिटाना मैंने मृत्यु को आमंत्रण देना ये हो जाता है। ये हालत होती है तब ज्ञान प्राप्त होती है इसके पहले कभी किसी को नहीं होती है। ऐसी दशा जब आती है तो जीव को मार्ग बहुत निकट होता है ऐसा जानना अभी उसको कोई अटकाव प्रतिबंध नहीं है बस खत्म हो गए उसको न समाज का प्रतिबंध होता है न कुटुंब का प्रतिबंध होता है न शरीर का जीव का भी प्रतिबंध होता है न दूसरे संकल्प विकल्प का भी प्रतिबंध होता है उसका तो एक ही संकल्प और एक ही विकल्प है माँ माँ और ये बात हो जाती है। ऐसी दशा आने में माया की संगति बहुत विटंबना में है ऐसी दशा आने पहले क्यों नहीं आते हो कि जीव माया का संगत करता है नहीं विटंबना है उसको क्या ऐसी दशा क्यों नहीं आती है पुरुष तो मिल गए, लेकिन ऐसी दशा क्यों नहीं आई कि माया कहीं न कहीं उसका लगाव है और जगह को उसका लगाव है। परंतु ऐसी दशा जो आनी चाहिए, ऐसा जो उसका दृढ़ निश्चय है, उसे बहुत करके अल्प समय में इस दशा की प्राप्ति नहीं होती है। देखो कैसे ज्ञान कराते हैं कि क्या होना चाहिए। मनुष्य को लिखा है कि ज्ञानी के पास ज्ञान की मांग नहीं करनी। क्या ज्ञानी से ज्ञान नहीं मांगना? क्या ज्ञानी से भक्ति मांगना? ऐसा लिखा है। किसी भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। भक्ति बिना अगर ज्ञान मांग लिया तो ये ज्ञान मिलेगा नहीं, ज्ञान शून्य डिग्री पर रह जाएगा। क्या कुछ जानकारी हो जाएगी तो ज्ञान के स्तर होगा शून्य होगा। आप सबों ने फिलहाल तो एक प्रकार से हमको बंधन में डाले हैं, इसलिए हमें क्या करना तो हमें सूझता नहीं है। सजीवन मूर्ति से मार्ग मिलता है, ऐसा उपदेश करने से, ऐसा उपदेश करने पर हमने स्वयं को ही बंधन किया है। ऐसा उपदेश करने में हमने स्वयं को बंधन में ले लिया है, और इस उपदेश के निशान आपने हमारे पर लगा दिया है। हमने ऐसी बात कही, आप हमें सत्पुरुष मान करके इतने बंधन में रखते हो, इतने बंधन में रखते हो, इसके लिए क्या करना है इसकी सूझ हमें नहीं आ रही है। आपने तो हमको निशान बना दिया और अनेक प्रकार की विटंबना खड़ी कर दी। हम तो सजीवन मूर्ति के दास हैं, हम तो सत्पुरुष के दास हैं, चरण अरज है। देखिए क्या लिखता है, हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशा में केवल अस्मिता वर्तती हो। हम तो गृहस्थी में पड़े हैं, व्यापार धंधा करते हैं, कुटुंब परिवार के बीच में रहते हैं, हमारी ऐसी कहाँ संग दशा है। अब हमें इतना बंधन मत करो कि बहुमान देते हैं, अधिक नहीं करते हैं तो उसको बंधन लगता है अपने आप को। आप लोग तो हमको बंधन कर रहे हैं, हमें बंधन में कृपा करके मत डालिए, ऐसा कहते हैं। हमारे उपासना योगियों को आप प्रत्यक्ष देखे ऐसा ही तो है। हम कितनी उपाधि करते हैं, व्यवसाय की, व्यापार की, कुटुंब परिवार की, आप प्रत्यक्ष देखते हो। हमको मनोदशा में असंग दशा में तो विचरते नहीं, फिर क्यों हमारे पीछे लगे हो, ऐसा कहते हैं। आखिर की बात आप सबके लिए मैंने लिखी है, हमको अब कम बंधन हो ऐसा करती है, ऐसे करने के लिए समय को विनती है। दूसरा यह भी विदित हो कि आप हमारे हमारे वास्ते कुछ भी अब किसी को कहना नहीं है, कि ज्ञानी है, कि पुरुष है, ऐसे है वैसे है, मेहरबानी करके मत कीजिए। हमारे एडवर्टाइजमेंट करने का बंद करो, ये कहते हैं उदय काल। आप जानते हो हमारा उदय कैसा है, आप जानते हो कहीं कैसे उदय में रहते हैं, इसलिए हमें बंधन में मत डालो। और दूसरा क्या लिखो, हमको तो ज्यादा सूझता नहीं है, तो सूझता नहीं है उसमें थोड़ी बात रहस्य वाली वो है कि अगले की भावना और अपना बंधन जो कॉन्ट्राडिक्टरी परिस्थिति आमने सामने आती है, एक ओर से अपने बहुत बाहर में प्रसिद्धि हो तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितनी प्रसिद्धि होगी उतना उत्सव समझिए, उतना परिश्रम समझिए, तो उतने उतनी तकलीफ होने वाली है। और जो करता है अपनी भावना से करता है, उसकी भावना तोड़ेगी कैसे और अपनी प्रसिद्धि करेगी कैसे, तो दो बार आमने सामने टकराते हुए हमको सूझता नहीं है कि हम क्या करें। कौन जानेगा, कौन जानेगा, दूसरे का तो जानने का सवाल नहीं रहता है। तो जो पात्र होते हैं अपने आप ठिकाने आ जाते हैं। सुगंध जी को पात्रता, सुगंध जी को जो पात्रता है प्रगत हुई, तो ठिकाना आए कि नहीं आए, सुंदर देखा नहीं था, देखा था कभी नहीं आए थे, सुंदर कहाँ से गाया जाता है वो उनको पता नहीं था पूरा, पर वहां हिंदी भाषा चलती नहीं थी उस जमाने में, गुरुदेव गुजराती में प्रवचन करते थे उसमें से आत्मा को पकड़ा है। भाषा का भी प्रतिबंध उसको नहीं रहा है, पात्रता ऐसे काम करती है, उससे बहुत ताकत में पात्रता है, पात्रता में उतनी ताकत हो, उतनी ताकत हो कि इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी कुदरत पर रहती है, कुदरत की जवाबदारी है, उसको काम करना पड़ता है, तो कहीं से कहीं आ जाते हैं। उस जमाने में 900 किलोमीटर की मुसाफरी किया है, अनजाने प्रदेश में आए, अनजाने लोगों के बीच में आए, अनजाने भाषा वाले के बीच में आए, काम कितना किया देखो, पात्रता क्या चीज होती है और कुदरत कैसे काम करती है, वो भी आत्मधर्म मंदा तो नहीं थे, आत्मधर्म इस वक्त हिंदू नया नया चालू हुआ था, और ऐसे जैसे हम आत्म जागृति प्रयोगचार भेजते हैं, ऐसे कुछ प्रचार के लिए फिर भेजते थे, तो हिंदू समाज एक वक्त वहां आती नहीं थी उतनी, तो हिंदू भाषा जो स्थिति है उसमें तो किसी से एड्रेस मिल गया तो भेज दो, उसका एड्रेस मिला तो भेज दो, ऐसे उनको मुफ्त में दे दी गई पत्रिका से, उसमें से पूरा आत्मा मिल गया, तो पत्रिका मुफ्त में आई और आत्मा पूरा मिल गया। क्या कुदरत की व्यवस्था होती है, दो हजार दो के साल में, अरे 2050 से 48 साल बाद को नहीं, बाबूपुर के पहले की बात है, शायद 46 की बात है, 45 साल चौरान में से 48 बात कर दो, 46 साल हुआ ना, 1946 में आए, 46 के साल में पहला पत्र किस साल में लिखा हुआ है, जो 46 में आया 2002 में 46 के साल होती है, हाँ जीवन परिचय में लिया है, हाँ 46 में बराबर।